नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप विकास और युवाओं की भागीदारी देश के भविष्य को नया आकार दे रही है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी के दूसरे सप्ताह में भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.82% बढ़कर 18,38,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। अमरीका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घने से बहुत घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। फसलों का त्यौहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली में आरंभ हो रहा है और कल रात महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और युवाओं की भागीदारी देश के भविष्य को नया आकार दे रही है। ये बात उन्होंने नई दिल्ली में कल विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि युवा नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के प्रयासों से ये देश रचनात्मक और प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से रचनाकारों का एक नया समुदाय तैयार हुआ है, जिससे ऑरेंज इकोनॉमी को अभूतपूर्व गति मिली है।
आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है, कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा होने पर वर्तमान युवाओं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। उन्होंने कहा कि उनकी क्षमता ही भारत की क्षमता बनेगी और उनकी सफलता ही भारत की सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
साथियों, साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा, आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल है जो कम समय में ही महत्वपूर्ण पंच के रूप में स्थापित हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि यह संवाद अपने आप में एक विचार मंथन का मंच बन गया है जो ये दर्शाता है कि भारत की युवा पीढ़ी रचनात्मकता से भरपूर है। प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के परिवर्तन के बारे में कहा कि 5-6 साल पहले अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास का दायित्व पूरी तरह से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पर था, लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र को निजी उद्यमियों के लिए खोलकर नीतियों का विस्तार किया और सहायक संस्थानों की स्थापना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन सभी के लिए एक महान मार्गदर्शक रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। इस दौरे के दौरान श्री शाह पूरे राज्य में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उत्तरायण उत्सव में भी भाग लेंगे। श्री शाह आज गांधीनगर में कला और वाणिज्य महाविद्यालय में नवनिर्मित खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री इसके बाद पेठापुर में राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत BSL-4 जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। श्री शाह अहमदाबाद के सनाथल में वैश्विक उत्कृष्टता की फार्मास्यूटिकल अकादमी की आधारशिला रखेंगे और आणंद में चारोतर विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और संतराम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वे बाद में अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ पतंग उत्सव में भी शामिल होंगे। इस दौरे के अंतिम दिन गृहमंत्री अहमदाबाद में आदि शंकराचार्य समग्र ग्रंथावली के विमोचन के समारोह में भाग लेंगे। इसे सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह 11 जनवरी तक 8.82% की वृद्धि के साथ 18,38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये वृद्धि 8,63,000 करोड़ रुपए की कॉरपोरेट कर प्राप्तियों और व्यक्तिगत करदाताओं के मजबूत योगदान के कारण संभव हुई है। इसी अवधि में टैक्स रिफंड में 17% की गिरावट आई, जिससे कुल कर संग्रह में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर सकल प्रत्यक्ष कर में 4.14% की वृद्धि हुई है, जो इस वित्त वर्ष में अब तक सकारात्मक वृद्धि को दर्शाती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12.7% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में प्रतिभूति लेन देन पर कर से 78,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध रोगियों के मिलने के बाद राज्य में एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप राहत दल तैनात किया है। इन रोगियों की पहचान कल कल्याणी के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की विषाणु अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला में हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक वीडियो साझा किया है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रकोप के प्रभावी प्रबंधन और रोकथाम के लिए व्यापक तकनीकी और परिचालन सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव ने स्थिति की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से तुरंत चर्चा की है।
इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। भारत सरकार इस घड़ी में वेस्ट बंगाल सरकार के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। भारत सरकार पूरी तरीके से टेक्निकल, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट दे रही है।
श्री नड्डा ने कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर इस दिशा में केंद्र राज्य समन्वय पर बल दिया है। नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। ये नंबर हैं 0332333-0180 और 9874708858। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यावसायिक रिश्ते रखने वाले देशों को अमरीका के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अमरीका के साथ सभी व्यापार पर 25% शुल्क तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। अमेरिका की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के मामले में सैन्य कार्रवाई सहित सभी अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कूटनीति के माध्यम से समाधान उनकी प्राथमिकता है। सुश्री लेविट ने बृहस्पतिवार को ट्रंप की वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो से मुलाकात करने की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घने कोहरे की संभावना व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर का अनुमान है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में शनिवार तक घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना है। फसलों का त्यौहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये त्यौहार फसलों के पकने की प्रसन्नता का प्रतीक है। लोग शाम को अलाव जलाते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं और परिवार तथा समाज के साथ खुशियों के पलों को साझा करते हैं। ये त्यौहार आपसी प्रेम और एकता का संदेश भी देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ये त्योहार आज और कल मनाए जा रहे हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ये त्योहार देश की समृद्ध कृषि परंपराओं के प्रतीक हैं, साथ ही ये त्योहार भारत की जीवंत और विविध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। मालविका बंसोड़ और तन्वी शर्मा भी महिला सिंगल्स में अपनी चुनौती रखेंगी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी पहले दौर में आमने सामने होंगे। पूर्व विश्व चैंपियन पदक विजेता किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। पुरुष युगल में विश्व की नंबर तीन जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी 2022 में जीता खिताब फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हरा दिया। नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 144 रन का लक्ष्य 12 ओवर और एक गेंद में एक विकेट के नुकसान पर 145 रन बनाकर हासिल कर लिया। ग्रेस हैरिस ने 85 रन की पारी खेली। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में एसजी पाइपर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। रांची में कल रात पाइपर्स के लिए टोमास डोमेने ने दोनों गोल दागे। गोलकीपर टॉमस सेंटियागो ने अंतिम क्वार्टर में एक पेनल्टी को भी बचाया। हैदराबाद तूफान्स के अमनदीप लकड़ा ने 41वें मिनट में एक गोल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं हमारी सहयोगी वैष्णवी।
धन्यवाद मुनीश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित होने वाले सभी हिंदी समाचार पत्रों ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े घटनाक्रम को मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। इसके अलावा उत्तर भारत में जारी शीतलहर और कोहरे से प्रभावित जनजीवन के समाचार भी सचित्र प्रकाशित किए हैं। जनसत्ता की पहली सुर्खी है, भारत अमरीका के बीच होगी पहली व्यापार वार्ता। पत्र ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर के कथन को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, जमी बर्फ पिघलने की संभावना है। इसी विषय पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रिश्तों में गर्माहट, अमेरिका से ट्रेड डील पर 5 माह बाद आज चर्चा। राजस्थान पत्रिका ने इसी समाचार को शीर्षक दिया है, नए अमरीकी राजदूत की मीठी बातें।
और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप विकास और युवाओं की भागीदारी देश के भविष्य को नया आकार दे रही है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घने से बहुत घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। और फसलों का त्यौहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और कल रात महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।